Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Akhilanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Hari Om. Pujya Maharaj ke Punishri Chano mein Vandan. पूज्य महाराज जी, जैसे हम कई सालों से परिचय में हैं, आप कई प्रवचन माला में हमारे साथ रहे, जो मनन आश्रम पुत्रवान जी महाराज द्वारा स्थापित है, उन्हीं में से कई अलग अलग संत निकले, जिसमें आप भी हैं। पूज्य महाराज जी 9 तारीख तक प्रतिदिन प्रातः कठोपनिषद विषय पर प्रवचन करेंगे। महाराज जी के साथ और भी कई सुंदर कार्यक्रम यह साल हम लेके आपके बीच में आएंगे, क्योंकि महाराज जी का जो प्रवचन का लाभ है वह हमें ज्यादा से ज्यादा प्राप्त करना है। मैं पूज्य महाराज जी को आप सबकी तरफ से वंदन करते हुए प्रार्थना करूंगा और प्रथम माल्यार्पण करेंगे। हरिओम।
ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांत शांत शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। सृष्टि के कण कण में अनुस्यूत निराकार परमात्मा और उसी निराकार परमात्मा के साकार रूप में उपस्थित मेरे प्यारे श्रोताजन, आज जो विषय है कठ उपनिषद। एक सज्जन मुझे मिले, उन्होंने कहा कि ये कठ उपनिषद मतलब बहुत ही मुश्किल है, गुजराती में उसे कहते हैं कठण। मैंने कहा आपके लिए शायद मुश्किल हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में जाएंगे तब हमको लगेगा ये किसी और की बात नहीं है, ये हमारी ही बात है। और हमारी बात समझने के लिए कभी किसी को मुश्किल नहीं होती। दो प्रकार की विद्या मुंडक उपनिषद में बताई, द्वे विद्ये वेदितव्य इति परा अपरा च। दोनों विद्या जाननी चाहिए, वेदितव्य कहा। एक है अपरा विद्या। अपरा विद्या माने क्या है? जैसे वेद के अंदर कर्मकांड और उपासना विभाग, वैसे तो तीन है, कर्म उपास्या उपासना और ज्ञान, लेकिन जो अपरा विद्या है वह है कर्म और उपासना। उनको अपरा क्यों कहा गया? अपरा विद्या उनको इसलिए कहा गया कि वह आपको मोक्ष नहीं प्राप्त करा सकते, इसलिए उनको अपरा विद्या कही। हां, वह आपको स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति करा सकते हैं, चित्त शुद्धि तक ले जा सकते हैं, लेकिन सीधे सीधा वह विद्याएं आपको मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकती, इसलिए उनको अपरा विद्या कहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि जितने भी वेद हैं उनमें कर्म विभाग और उपासना विभाग, वह दोनों अपराविद्या है। तो फिर पराविद्या क्या है? पराविद्या है यया अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा हम अक्षर ब्रह्म को जान सकते हैं। अब और एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि ये जो शास्त्र है वो पूरा शब्दात्मक है, शब्द के अलावा और कुछ तो है ही नहीं। अगर शब्दों से जाना जा सकता है तो शब्द तो मर्यादित है और परमात्मा या अक्षर ब्रह्म वह अमर्यादित है। मर्यादित से अमर्यादित कैसे जाना जाए, शब्द से अशब्द कैसे जाना जाए, बड़ी समस्या होगी। भाष्यकार लिखते हैं वहां कि बतलाते हैं कि जिस निर्गुण निराकार ब्रह्म को बतलाने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग शास्त्र द्वारा किया जाता है, उससे जो लक्षणावृत्ति से जो लक्ष्य ब्रह्म की पहचान होती है वह ही परा विद्या है। इसका अर्थ यह हुआ कि तत्वमसी महावाक्य है, उसकी जो लक्षणावृत्ति है वह ही पराविद्या है। अगर तत्वमसी महावाक्य शब्द को सिर्फ लेंगे तो वह अपराविद्या होगी, लेकिन जो लक्षण है वह पराविद्या है, क्योंकि उससे ही अक्षर ब्रह्म की पहचान होती है। तो दो प्रकार की विद्या का उल्लेख हमारे शास्त्रों में, विशेषतः मुंडक में हमने देखी। इन दोनों में से कौन सी जाननी चाहिए स्वामी जी, एक बहुत बड़ा प्रश्न आए। सिर्फ पराविद्या जान के बैठेंगे तो भी नहीं चलने वाला, और सिर्फ अपराविद्या जान के बैठेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला। तो क्या दोनों जाननी चाहिए? हां, शास्त्र स्वयं कहता है दोनों जाननी चाहिए। जैसे हमने नई गाड़ी खरीदी है, अब जानना चाहिए कि गाड़ी कैसे ड्राइव होती है, वो भी एक विद्या तो है ही। उतना ही नहीं, उसका पेट्रोल की टंकी कहां पे वो भी जानना चाहिए, पेट्रोल की कीमत कितनी है वो भी जानना चाहिए। सिर्फ गाड़ी खरीद ली हमने, इतने पैसे दिए दिए, उससे जानने का कोई महत्व नहीं होगा। दोनों जानना पड़ेगा आपको। गाड़ी जब खरीदते हैं तब ये दोनों बातें सोचते हैं कि हमारे फायदे के लिए है या नहीं। और बंबई जैसे शहर में तो छोटी गाड़ी अच्छी है, बड़ी गाड़ी अच्छी है, गैरेज है या नहीं, ये सब जानना पड़ेगा। बस वैसी ही बात यहां पे है। अपरा विद्या भी जाननी चाहिए, इसलिए वेदितव्य शब्द लिखा है। द्वे विद्ये वेदितव्य इति परा अपराच। कठ उपनिषद के अंदर दो पात्र है, एक तो है साक्षात यमराज। यमराज का नाम सुनते ही सुबह सुबह लोगों को अच्छा नहीं लगता, जब चाय पीते हो और मरने की बात करेंगे, शुभ शुभ बोलो भाई आज सुबह सुबह कम से कम। यमराज का नाम किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन याद रहे ये यमराज ऐसे हैं जिनके पास ब्रह्म विद्या है। यमराज कोई ऐसे आलतू फालतू आदमी नहीं है, ब्रह्म विद्या है उसके पास। और दूसरे पात्र है छोटा बच्चा नचिकेत। दो पात्र है। हमारे देश की यह परंपरा रही है कि दो पात्र के संवाद के द्वारा इस तत्व को उजागर किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि एक पात्र मौन रहे और दूसरा प्रश्न पूछते ही जाए। जैसे मान लीजिए मैंने मौन व्रत धारण कर लिया और आप प्रश्न पूछते ही जाते हैं, मैं सिर्फ एक ही उत्तर देता हूं, आपको क्या समझ में आया? महाराज जी शायद ये कह रहे हैं कि ये पांच भूत से परे परमात्मा है, कोई ऐसा इंटरप्रेट करेगा। या तो कोई कहे कि महाराज जी हमको शांत रहने को बोलते हैं, सब अपने अपना इंटरप्रिटेशन करेंगे। देखिए संवाद में दोनों तरफा व्यवहार होता है, एक प्रश्न पूछेगा दूसरा उत्तर देगा। भगवत गीता देख लीजिए, अर्जुन प्रश्न पूछते ही जा रहा है और भगवान भी उत्तर देते ही जा रहा है। भगवान ने ऐसा कर दिया, सिर्फ दक्षिणामूर्ति की तरह मौनम व्याख्यानम, तो अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे मैंने सिर्फ ये संज्ञा की तो जो सुबह मेरी चाय लाने वाला है वो ये समझेगा कि स्वामी जी को चाय बहुत अच्छी लगी, इसलिए ऐसा इशारा कर रहा है। अगर यहां बैठा है तो लेकिन वह संज्ञा अलग है और उनका अर्थघटन अलग होता है। तो देखिए हमारे देश की परंपरा में प्रश्न पूछना यह एक परंपरा है। कई लोग ऐसे सोचते हैं महाराज जी को प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, अपने आप घर बैठ के प्रश्न का समाधान प्राप्त कर लेना चाहिए। ये भी नहीं हो पाएगा, प्रश्न पूछना ही चाहिए। दो व्यक्ति प्रश्न नहीं पूछते हैं, या तो जिनको ज्ञान हो गया है कोई प्रश्न ही नहीं है, या तो कुछ पता ही नहीं चला तो प्रश्न कहां से पूछेंगे। इसे देखिए ये कठ उपनिषद के अंदर दो पात्र आएंगे, नचिकेता ने तीन प्रश्न तो पूछे हैं। कथानक आप सबको मालूम है, मैं वो ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा क्योंकि वो आपको सब पता है, मेरे से शायद ज्यादा आपको पता होगा क्योंकि आप तो मेरे जैसे बहुत से लोगों को सुनते होंगे। लेकिन महत्व यह है कि प्रश्न पूछना चाहिए। उपनिषद में है केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राण प्रथम प्रेति युक्त, कौन है वो जो मन को प्रेरणा कर रहा है, कौन है वो कि प्राण को भी आयो और जाओ ऐसी आज्ञा देता है। शिष्य ऐसा प्रश्न पूछता है। उतना ही नहीं लेकिन अष्टावक्र गीता के अंदर सिर्फ एक बार प्रश्न पूछा राजा जनक ने, कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर भविष्यति वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतद् ब्रूहि मम प्रभो। ये एक प्रश्न के ऊपर पूरी अष्टावक्र गीता है। लेकिन अगर गुरु मौन रहे तो संवाद नहीं हो पाएगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं गुरु को सब पता है, मैं प्रश्न नहीं पूछूंगी तो भी गुरु को सब पता है, वह ही उत्तर देंगी। एक माई ऐसी थी, वो माई आई और स्वामी जी का प्रवचन खत्म हुआ, वो माई बैठी और महाराज जी ने कहा क्या कुछ काम है, तो माई कह रही है आपको सब पता है स्वामी जी। अब महाराज जी ने सोचा कि इनकी उम्र 55-60 के बीच की है, घर में कुछ बहू के साथ अनबन हुई होगी, इसलिए समाधान के लिए आई। तो महाराज जी ने प्रश्न पूछा घर में कुछ गड़बड़ हुई क्या, हाँ देखो आपको सब मालूम है ना। अब महाराज जी ने तो अनुमान से कहा होगा। तो देखिए ऐसा मन में नहीं सोचना चाहिए कि स्वामी जी को सब पता है। प्रश्न जिस तरह से पूछा जाए उससे सामने वाले को पता चलता है कि सामने वाले प्रश्न पूछने वाले का लेवल क्या है। अगर वह कर्म विषय एक प्रश्न पूछता है तो वो उसके मुताबिक उत्तर देगा, उपासना विषय प्रश्न पूछेगा तो उपासना के मुताबिक वह उत्तर देगा, और ज्ञान विषय प्रश्न पूछेगा तो समझेगा ये अधिकारी है। नचिकेता तीन प्रश्न वरदान के रूप में मांग लेता है और वरदान देने वाले तो साक्षात यमराज है। हम अगर भगवान के पास अगर गए या तो भगवान हमारे पास आए, यहां तो नचिकेता स्वयं वहां जाता है यमराज के वहां। अक्सर तो क्या होता है, यमराज आता है, व्यवहार में क्या होता है, यमराज आता है, लेकिन यहां थोड़ा उल्टा है, नचिकेता स्वयं यमराज के पास जाता है और तीन वरदान जब उन्होंने मांगे, सबसे पहला वरदान मांगा कि मेरे वहां वापस पृथ्वी लोक में जाने के बाद मेरे पिताजी दुर्वासा हो गए थे तो वह शांत हो जाए। उतना ही नहीं, मैं जैसा हूं वैसा मुझे पहचाने, क्योंकि ये तो यमलोक गया था, यमलोक से वापस वहां गया, यहां से यू वाया गया था ना, तो वो जैसा मैं वैसा हूं वैसा मुझे पहचाने। अगर हम लोगों को यमराज अगर प्रसन्न न हुए, मान लीजिए नचिकेता की बात और है, अगर यमराज हमारे ऊपर प्रसन्न न हुए, हमको कहे कि आप एक वरदान मांगो, आप लोग क्या मांगोगे, जरा सोचने जैसी बात है, क्या मांगोगे आप लोग। इन्होंने कहा ब्रह्म ज्ञान मांगेंगे, बात सही है, जिसके पास जो है वह ही देगा। नचिकेता ने भी इनके जैसा ही मांगा, लेकिन वह तीसरा वरदान है। दूसरा वरदान नचिकेता ने मांगा कि स्वर्ग गमन के लिए ये ईंटों का चयन करते हैं, अग्नि विद्या जिससे कहते हैं, उसके बारे में कृपा करके मुझे बताइए। विशेष रूप से यमराज जी ने कुछ बताया नहीं, क्योंकि वह इस कठोपनिषद का विषय नहीं है। लेकिन तीसरा जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे मान लीजिए पूरे ग्लास में पूरा सागर मांग लिया, नचिकेता ने प्रश्न पूछा कि कुछ लोग कहते हैं कि शरीर समाप्त होने के बाद जीवात्मा रहता है और कुछ लोग कहते हैं रहता नहीं है। ये प्रश्न इसलिए पूछा होगा कि उस वक्त उस समय में ऐसी शंकाएं समाज में प्रचलन होगी। उतना ही नहीं, आजकल भी लोग ऐसे हैं। कुछ साल पहले मैंने आपके बंबई शहर के बहुत बड़े अभिनेता जिनको आप बिग बी के नाम से जानते हैं, बिग बी, हाँ हाँ आपको नाम मालूम है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक ये शरीर में लौ है, लौ माने दीपक, जब तक ये शरीर में लौ है तब तक मैं काम करता रहूंगा, जब ये लौ बुझ जाएंगी काम समाप्त हो जाएगा। इसका क्या हुआ कि ये जीवात्मा शरीर खत्म होने के बाद रहता नहीं, ऐसा उनका मानना है। तो देखिए नचिकेता के टाइम में भी ऐसे कंफ्यूजन थे और आजकल के कहलाते हुए पढ़े लिखे लोग के दिमाग में भी ऐसा कंफ्यूजन है। नचिकेता ने प्रश्न पूछ लिया, उसका कार्य समाप्त हो गया, अब शुरुआत हो रही है यमराज की। स्वाभाविक है उसकी वो ट्रेड सीक्रेट है, उसका धंधा है। अगर आप किसी व्यक्ति से उसके बिजनेस की सीक्रेट जानना चाहेंगे तो कौन देगा, कोई नहीं देगा। यमराज का ट्रेड सीक्रेट है क्या, मरने के बाद जीवात्मा रहता है या नहीं। अगर उसने बता दिए तो उसका धंधा चौपट हो जाएगा, कौन पूछेगा यमराज को, डरेगा कौन उनसे? इसलिए यमराज ने क्या किया, यमराज ने बहुत सारे प्रलोभन देने शुरू कर दिए। 100 साल की आयुष्य तो ले ले भाई, मेरी अप्सराएं है, नाच गान जितनी आपको चाहिए सुख सुविधा सब ले ले, लेकिन कृपा करके इस विषय में प्रश्न न पूछना। अगर कोई सामान्य आदमी होता तो हाँ आपकी बात सही है, आप सब मेरे को दे दो, आप जाओ इधर से, लेकिन ये तो नचिकेता था। नचिकेता वैराग्यवान था। वैराग्यवान का अर्थ आम तौर पे लोग ऐसा करते हैं, दूर रहो महाराज जी पैसे का स्पर्श नहीं करते। कुछ संप्रदाय वाले ऐसे भी हैं, स्त्रियों को देखते नहीं है, वह वैराग्य नहीं है। वैराग्य का नाम जैसे लोग सुनते हैं ना, लोग उसे दूर भागना चाहते हैं। ये बाबा लोग वैरागी होते हैं और हम लोग गृहस्थी लोग संसार में आसक्त होते, ऐसी बात नहीं है। वैराग्य का अर्थ है परिपक्वता, मैच्योरिटी। सफेद बाल आने मात्र से कोई परिपक्व नहीं हो जाता। स्वामी जी, अब हम सब सफेद बाल वाले को डांट रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं। मैंने अभी कहा वैराग्य का अर्थ है परिपक्वता। परिपक्वता माने क्या? जैसे एक विषय है, मान लीजिए आइसक्रीम है, अब आइसक्रीम खाने से ज्यादातर सब लोगों को सुख शांति मिलती है ना? बात सही है कि नहीं? हाँ, अरे कोई बात नहीं, अगर आपको आइसक्रीम पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन ज्यादातर आम तौर पे लोगों के दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि आइसक्रीम खाने से सुकून मिलता है, शांति मिलती है, प्रसन्नता होती है। लेकिन क्या ये नियम जो है वो नियम सब लोगों के ऊपर लागू होता है? नहीं होता। क्यों? इनका कहना है शुगर, और क्या हो सकती वजह? कोई खाएगा तो उसका नाक ब्लॉक हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। इसका अर्थ यह हुआ कि आइसक्रीम खाने से आपको सुकून मिलता है, शांति मिलता है, वो आपके लिए ठीक है, दूसरों के लिए ठीक नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि आइसक्रीम खाने से सुख मिलता है वह सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, व्यक्ति के ऊपर है निर्भर। और डॉक्टर ने कह दिया कि अब आप आइसक्रीम खाओगे या लड्डू खाओगे तो डायबिटीज कितना शूट होगा वो आप तय कर लेना। अब लड्डू को आप देखते हो, आइसक्रीम को देखते हो, देखते ही आपके मन में क्या विचार आएगा? चलो खा लूं। लेकिन फिर डायबिटीज का नाम सुनते ही बोला आप रुक जाते हो। ये रुक जाते हो उसको कहते हैं वैराग्य ना स्वामी जी? ऐसी बात नहीं है, मैं आऊंगा उस मुद्दे के ऊपर धीरे धीरे। मन में इच्छा तो बनी हुई है लेकिन खा नहीं सकते, क्या करें? फिर भी किसी ने, आप एक काम करो, थोड़ा सा ले लो, थोड़ा सा मेरी ओर से, ठीक है चलो आपने ले लिया, और फिर बाद में डायबिटीज की गोली भी ले ली। तो क्या आपके चित्त में आइसक्रीम के प्रति या लड्डू के प्रति वैराग्य हुआ है? नहीं। तो वैराग्य वास्तव में है क्या? वैराग्य वास्तव में यह है, जहां सुख नहीं है वहां हमने कल्पना कर ली है, उससे ऊपर उठ जाना उसे कहते हैं वैराग्य। आप देखते हो लेकिन अब आपको मालूम है कि इसमें वास्तव में सुख है नहीं, आपने मान लिया है कि इसमें सुख है, वास्तव में नहीं है। अगर उसमें सुख होता तो सबको सुख देना चाहिए था, लेकिन वास्तविकता तो यह है कि आइसक्रीम या लड्डू सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, व्यक्ति के ऊपर है, किसी को सुख मिले किसी को ना मिले। इसलिए विषयों के आसपास रहते हुए भी शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांच विषय है, हम उसी के आसपास रहते हैं, बीच में रहते हैं, हिमालय में जाके रहते नहीं है, उसके आसपास रहते हुए भी हमारे मन में एक परिपक्वता है कि ये विषयों में वास्तविक सुख नहीं है, हमने मान लिया है सुख है। एक व्यक्ति है, अपनी स्त्री को तलाक दे रहा है, बहुत हो गया तेरे से, अभी बहुत मैंने सहन किया, अब तू अपने घर चली जा। वो रो रही है, वो घर आ गई, दूसरा एक आदमी उसे स्वीकार करने को तैयार है, क्योंकि उसके दो छोटे छोटे बच्चे हैं, उसकी पत्नी मर चुकी है, अब उसकी परवरिश करने वाला कोई है ही नहीं। वो कह रहा है कोई बात नहीं, मैं तेरे से शादी करने को तैयार हूं। अब देखिए, अगर वो स्त्री में सचमुच दुख होता तो दूसरा जो व्यक्ति है उसे स्वीकार नहीं करता, अगर उस स्त्री में सुख होता तो पहला वाला उसे छोड़ता नहीं। इसीलिए कोई भी व्यक्ति हो, पदार्थ हो, परिस्थिति हो, उसमें सुख है या दुख है वो व्यक्ति के ऊपर निर्भर है। वास्तव में सुख या दुख हमारी कल्पना के ऊपर है, हमने मान लिया है, इसलिए या सुख है या दुख है।